पद निर्माण में लिंग वचन कारक काल एवं वाक्य का महत्व। पहला, पद और लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात जिससे किसी वस्तु को पहचाना जाता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला लौकिक या प्राकृतिक और दूसरा व्याकरणिक। लौकिक या प्राकृतिक लिंग से अभिप्राय उन चिन्हों से है जिनके द्वारा स्त्री और पुरुष का भेद जाना जाता है, जैसे स्त्री पुरुष, माता पिता, लड़की लड़का, गाय बैल, बकरी बकरा, घोड़ी घोड़ा आदि। इनमें से क्रमशः पहला शब्द स्त्रीवाचक है और दूसरा पुरुषवाचक है। इसके अतिरिक्त व्याकरणिक लिंग से अभिप्राय उन चिन्हों से है जिनके द्वारा भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों को पहचाना जाता है। व्याकरणिक लिंग कभी कभी प्राकृतिक या लौकिक लिंग के समान नहीं होते, जैसे नाक कान, आँख पलक, जीभ दांत, छाती पेट आदि में से न तो कोई पुरुषवाचक है और न कोई स्त्रीवाचक, अभी तो सभी अंगवाचक शब्द हैं, फिर भी इनमें व्याकरणिक लिंग विद्यमान है, जैसे नाक स्त्रीलिंग है और कान पुलिंग, आँख स्त्रीलिंग है और पलक पुलिंग, जीभ स्त्रीलिंग है और दांत पुलिंग, तथा छाती स्त्रीलिंग है और पेट पुलिंग। इस प्रकार व्याकरणिक लिंग प्राकृतिक लिंग से भिन्न होते हैं। संस्कृत में तीन लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जैसे राम, निर्जर, विश्वपा, हरि, सखा आदि पुल्लिंग शब्द हैं। सीता, लता, रमा, विद्या, मति, नदी आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं और ज्ञान, वारि, फल, सुधि, मधु आदि शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। अंग्रेजी भाषा के चार व्याकरणिक लिंग होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनियन, कॉमन और न्यूटर। इनमें से जो शब्द प्राकृतिक पुरुषवाची होते हैं वह मैस्कुलिन होते हैं, जैसे मैन, डॉग, हॉर्स, बॉय आदि। जो शब्द प्राकृतिक स्त्रीवाचक होते हैं, जैसे फेमिनियन लिंग होते हैं, जैसे वुमन, बीच, मेयर, गर्ल आदि। जो शब्द प्राकृतिक शब्द और स्त्री दोनों का अवबोध कराते हैं उन्हें कॉमन लिंग कहते हैं, जैसे चाइल्ड, एनिमी, फ्रेंड, पीपल आदि। और जो शब्द बेजान होते हैं वे सब न्यूटर लिंग कहलाते हैं, जैसे चेयर, टेबल, ट्री, स्कूल, डेस्क आदि। हिंदी भाषा में केवल दो ही व्याकरणिक लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो जानदार एवं बेजान शब्द पुरुषत्व का बोध कराते हैं वे सभी हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, और जो जानदार या बेजान शब्द स्त्रीत्व का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पिता, घोड़ा, बकरा, नगर, पहाड़, डंडा, पत्थर आदि शब्द पुल्लिंग है, जबकि माता, घोड़ी, बकरी, नगरी, पहाड़ी, डंडी, पथरी आदि शब्द स्त्रीलिंग है। अतः भाषाओं में प्रयुक्त व्याकरणिक लिंग के लिए कोई तर्कसम्मत या न्यायोचित नियम नहीं है। कहीं प्राकृतिक लिंगों का आधार बनाकर व्याकरणिक लिंग बनाए गए हैं, कहीं चेतन एवं अचेतन के भेद पर इन लिंगों का निर्माण हुआ है, कहीं अबुद्धता असुबुद्धता को आधार बनाकर लिंगों का निर्णय किया गया है, कहीं सबलता दुर्बलता के आधार पर लिंगों का निश्चय किया गया है, कहीं लघुता महत्ता के भेद पर लिंग निश्चय हुए हैं, कहीं कोमलता कठोरता के सारे लिंगों का निर्माण हुआ है, और कहीं सप्राणता निष्प्राणता को देखकर लिंग निश्चित किए गए हैं। कभी कभी तो एक ही अर्थ के द्योतक शब्द कोई पुल्लिंग, कोई स्त्रीलिंग और कोई नपुंसक लिंग माना जाता है, जैसे संस्कृत में पत्नी के लिए दार, भार्या और कलत्र तीन शब्द प्रचलित हैं। इनमें से दार शब्द पुल्लिंग है, भार्या शब्द स्त्रीलिंग है और कलत्र शब्द नपुंसक लिंग है। ऐसे ही हिंदी में पवन और पवमान शब्द पुल्लिंग है और वायु और हवा स्त्रीलिंग है। आँख शब्द स्त्रीलिंग है जबकि इसके पर्यावरण चक्षु और नेत्र पुल्लिंग है। मार्ग शब्द पुल्लिंग है जबकि बाट और राह स्त्रीलिंग है। खेल पुल्लिंग है जबकि इससे पर्यायवाची क्रीड़ा और लीला शब्द स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग संबंधी अनियमितता भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हिंदी के पद निर्माण में लिंग का बड़ा हाथ रहता है, अन्य भाषाओं में तो प्रायः लिंग का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि तक ही रहता है और क्रिया पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे संस्कृत भाषा में राम गच्छति, सीता गच्छति वाक्यों में राम के साथ ही गच्छति क्रिया आई है, जबकि राम पुल्लिंग है और सीता शब्द स्त्रीलिंग है तब भी उसी गच्छति क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अंग्रेजी में राम गोज और सीता गोज दोनों वाक्यों में पुल्लिंग राम और स्त्रीलिंग सीता के साथ एक ही क्रिया गोज का प्रयोग हुआ है, परंतु हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ साथ क्रिया पर भी लिंग का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, जैसे राम जाता है, सीता जाती है, वह यानी पुरुष आता है, वह यानी स्त्री आती है, यह उसका यानी उस पुरुष का भाई है, यह उसकी उस पुरुष की बहन है, नीला घोड़ा चल रहा है, नीली घोड़ी चल रही है आदि वाक्यों में लिंगों के अनुसार क्रिया सर्व क्रिया सर्वनाम विशेषण आदि में परिवर्तन हो गए हैं। जैसे राम जाता है, वाक्य में राम पुल्लिंग है इसलिए जाता है, पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। सीता जाती है, वाक्य में सीता स्त्रीलिंग है इसलिए जाती है, स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी तरह वह पुरुष आता है और वह स्त्री आती है, वाक्यों में लिंगानुसार क्रिया बदल गई है। यह उसका भाई है, वाक्य में भाई के पुल्लिंग होने के कारण उसका सर्वनाम पुल्लिंग हो गया। और यह उसकी बहन है, वाक्य में बहन के स्त्रीलिंग होने से उसकी स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नीला घोड़ा चल रहा है, वाक्य में घोड़ा पुल्लिंग होने से उसका विशेषण नीला भी पुल्लिंग में आया है। और नीली घोड़ी चल रही है, वाक्य में घोड़ी के स्त्रीलिंग होने के कारण उसका विशेषण नीली स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार पद निर्माण में लिंग का अत्यधिक महत्व होता है। दूसरा, पद और वचन। पद निर्माण में वचन का भी अत्यधिक हाथ रहता है। वचन शब्दों या पदों के संख्या भेद की ओर संकेत करता है। वचन से यह ज्ञात होता है कि पदार्थ एक है या अनेक। संस्कृत, जैन, अरबी, इब्रानी, यूनानी, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में पहले वचनों की संख्या तीन थी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिथुआनी भाषा में आज भी द्विवचन का प्रयोग मिलता है। यदि द्विवचन के समान अन्य वचनों की भी संख्या मान ली जाए तो वचन के भेदों की कोई सीमा नहीं रह सकती, क्योंकि फिर वचन एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, चतुर्थ वचन, पंचम वचन आदि अनेक वचन मानने पड़ेंगे। इस प्रकार भारतीय अर्य भाषाओं में संस्कृत के उपरांत द्विवचन का लोप पाया जाता है। वैसे भी एक वैज्ञानिक तथ्य यह है कि एक उपरांत चाहे दो या तीन, चार या पाँच, सभी बहुत के ही द्योतक होते हैं। इसलिए एक संख्या का बोध कराने के लिए एक वचन और बहुसंख्या का बोध कराने के लिए बहुवचन ही सर्वथा उपयुक्त एवं तर्कसम्मत प्रतीत होता है। प्राचीन विद्वानों ने दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, दो होंठ आदि देखकर संभवतः द्विवचन की कल्पना की थी। परंतु जब एक से अधिक सभी बहुत के ही वाचक होते हैं तब दो को बहुत से पृथक मानना उचित नहीं जान पड़ता। क्या आँख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि के बारे में ऐसे उल्लेख नहीं मिलते हैं कि युग में ही नहीं अपितु सहस्त्र सहस्त्र की संख्या में भी होते हैं? अतः कान, नाक, आँख आदि के आधार पर द्विवचन की कल्पना करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसी कारण वचन के दो भेद ही आज अधिकांश भाषाओं माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मूलाधार एक पदार्थ है और बहुवचन समूह के आधार पर माना गया है। इस प्रकार एक वचन एक वस्तु का द्योतक है और एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में भी पद निर्माण के लिए वचनों के उक्त दो भेदों को ही स्वीकार किया जाता है। जैसे लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन, लड़की एक वचन है और लड़कियां बहुवचन, पहाड़ एक वचन है और पहाड़ों में बहुवचन, नगर एक वचन है और नगरों बहुवचन, खेत एक वचन है और खेतों बहुवचन, तथा बांस एक वचन है और बांसों बहुवचन। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए, ओ, आ आदि का प्रयोग होता है। कभी कभी वाक्यों में प्रयोग करते समय कुछ शब्दों में बहुवचन का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, फिर भी वे बहुवचन होते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे, उर्वशी को देखते ही देवों के हृदय मचल उठे। संसार में मूल रंग तीन है, स्वयंवर में अनेक राजा उपस्थित थे, वहाँ बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, शत्रुओं ने बड़े बड़े वीर सैनिक मार गिराए, आर्य सूर्य के उपासक थे आदि। उक्त वाक्यों में क्रमशः प्राण, लोग, हृदय, रंग, राजा, योद्धा, सैनिक, आर्य आदि शब्द एक वचन की तरह प्रयुक्त होकर भी बहुवचन के द्योतक हैं। कुछ पुरुषवाचक शब्दों को बहुवचन के रूप में लाने के लिए उनके साथ लोग शब्द का व्यवहार किया जाता है। जैसे ऋषि लोग आ गए हैं, आर्य लोग मध्य एशिया में रहते हैं, वैश्य लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं आदि। इसके साथ ही जब किसी वाक्य में एक ही शब्द विभक्त रहित और विभक्त सहित आता है तब उसके बहुवचन के रूपों में भी अर्थ हो जाता है, क्योंकि विभक्ति रहित शब्द में ए और आ की मात्राएं लगती हैं, जबकि विभक्ति सहित शब्द में ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे ये घोड़े उन घोड़ों से अच्छे हैं, ये लड़कियां उन लड़कियों से सुशील हैं आदि वाक्यों में घोड़े और लड़कियां पद विभक्ति रहित बहुवचन है, इसलिए इनमें ए और आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जबकि घोड़ों और लड़कियों पदों विभक्ति सहित बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ ओ की मात्रा के द्वारा बहुवचन का पद बनाया गया है। इसके साथ ही संस्कृत में जिस तरह आदरार्थे बहुवचनम प्रचलित है उसी तरह हिंदी में भी आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ऐसे महात्मा गांधी आए हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जयपुर नरेश पधार रहे हैं, स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं आदि। यहाँ महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री, जयपुर नरेश, स्वामी विवेकानंद आदि पद यद्यपि एक वचन के हैं तथापि यहाँ वाक्य में इनका प्रयोग आदर देने के लिए बहुवचन की तरह हुआ है। इस प्रकार वचन के आधार पर भी भेदों का विविध रूपों में निर्माण होता है। यही कारण है कि पद निर्माण में वचन का भी अत्यधिक महत्व है। तीसरा, पद और कारक। पद निर्माण में कारकों अथवा विभक्ति चिन्हों का सर्वाधिक हाथ रहता है। संपूर्ण संज्ञा पदों का निर्माण कारकों एवं विभक्ति चिन्हों के द्वारा होता है और क्रियापद तिगंतों के योग से बनते हैं। कारक क्रिया का निष्पादक होता है, क्योंकि कौन कौन पद क्या क्या कार्य संपादन करते हैं इसका ज्ञान कारकों के द्वारा ही होता है। भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण कारण के भी कई भेद हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा में कारकों की संख्या नियत है। जैसे अंग्रेजी में केवल दो कारक होते हैं, लैटिन और जर्मनी भाषाओं में पांच कारक होते हैं, पुरानी स्लैविक भाषा में छह कारक होते हैं, संस्कृत ग्रीक लिथुआनी भाषाओं में सात कारक होते हैं और हिंदी में आठ कारक होते हैं। संस्कृत में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और संबोधन नामक सात कारक माने जाते हैं। संबंध को वहाँ कारक नहीं माना जाता, क्योंकि यह क्रिया की निष्पत्ति में कोई कार्य नहीं करता, अपितु उसका संबंध संज्ञा से होता है। जैसे राम का बेटा है, श्याम का घर है आदि पदों में बेटा एवं घर का संबंध तो क्रिया है से है, किंतु राम एवं श्याम का कोई संबंध क्रिया है से नहीं है, जबकि राम का और श्याम का दोनों पद संबंध कारक के हैं। हिंदी के आचार्यों ने संबंध कारक को भी स्थान देकर हिंदी भाषा में आठ कारकों की स्थिति स्वीकार की है, और इसी आधार पर आज हिंदी में आठ कारक माने जाते हैं, जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत के आचार्य तो क्रिया के साथ संज्ञा के अन्वय को कारक मानते हैं, परंतु हिंदी के आचार्यों ने संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस पर कुकारक माना है। इस दृष्टि से के कारण केवल क्रिया के निष्पत्ति में ही सहायक नहीं होते, अपितु वे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का भी बोध कराया करते हैं। इसका एक कारण यह है कि संस्कृत में तो कारक को पृथक तथा विभक्तियों को पृथक स्वीकार किया गया था, जबकि हिंदी में कारक और विभक्तियों का एकीकरण कर दिया गया है, क्योंकि ये विभक्तियाँ भी तो कारक के ही चिन्ह हैं। हो सकता है कि हिंदी में कारक और विभक्ति को एक मानने की प्रथा अंग्रेजों के कारण चल पड़ी हो, क्योंकि अंग्रेजी में इन दोनों को एक ही माना गया है। कारकों के द्वारा प्राय शब्दों पदों का निर्माण पर्याप्त मात्रा में होता है। जैसे हे मित्र, राम ने रावण को बाणों से सीता के लिए वन से लंका जाकर और समुद्र का पुल बांधकर युद्ध में मारा। इस वाक्य में सभी पद कारकों द्वारा निर्मित है। जैसे हे मित्र संबोधन कारक है, राम ने कर्ता कारक है, रावण को कर्म कारक है, बाणों से करण कारक है, सीता के लिए संप्रदान कारक है, वन से यानी अपदान कारक है, समुद्र का संबंध कारक है और युद्ध में अधिकरण कारक है। इस प्रकार उक्त वाक्य सभी पदों का निर्माण विभक्तियों द्वारा हुआ है जो कारक के चिन्ह लगाती है। ये विभक्तियाँ वैसे तो प्रायः प्रत्येक पद के साथ लगी रहती हैं, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि कारक चिन्ह या विभक्ति को नहीं लगाया जाता और बिना विभक्ति के भी पद बन जाता है। प्रायः कर्ता कारक और कर्म कारक के चिन्ह ने और को का प्रयोग कई स्थानों पर नहीं होता। जैसे राम रोटी खाता है, इस वाक्य में राम कर्ता कारक का पद है किंतु यहाँ नहीं चिन्ह नहीं है। ऐसे ही रोटी कर्म कारक का पद है किंतु यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। संस्कृत के विद्वान तो जहाँ विभक्ति दिखाई नहीं पड़ती वह विभक्ति का लोप मान लेते हैं, क्योंकि उनके मत से यहाँ विभक्ति का आगमन तो हुआ था किंतु बाद में लुप्त हो गई। परंतु पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने ऐसे स्थलों पर शून्य विभक्ति की कल्पना की। इस प्रकार यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पद निर्माण में कारकों का भी महत्वपूर्ण योग रहता है। चौथा, पद और काल। संज्ञा एवं सर्वनाम के पद निर्माण में जिस प्रकार कारकों का सर्वाधिक हाथ रहता है, उसी प्रकार क्रियापद के निर्माण में सर्वाधिक हाथ काल का रहता है। काल से तात्पर्य यह है कि वह क्रिया के कार्य के निष्पत्ति का समय बताया करता है। कौन सी क्रिया कब हो रही है इसका ठीक ठीक ज्ञान काल के द्वारा हुआ करता है। काल मुख्यतः तीन होते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। जो कार्य हो चुका है उसका ज्ञान भूतकाल द्वारा होता है, जो कार्य हो रहा है या होता है उसका ज्ञान वर्तमान काल से होता है, और जो कार्य आगे चलकर होगा उसका बोध भविष्य काल से होता है। इन कालों के आधार पर ही क्रियापदों का निर्माण होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाता है और राम रोटी खाएगा। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः खाई क्रियापद भूतकाल का द्योतक है, खाता है क्रियापद वर्तमान काल का द्योतक है और खाएगा क्रियापद भविष्य फल का द्योतक है। अतः एक खाना क्रिया काल के अनुसार ही परिवर्तित होती चली गई। इस काल के सूक्ष्माति सूक्ष्म वेद को जानने के लिए विद्वानों ने कालों के कितने ही वेद किए। जैसे संस्कृत में भूतकाल की सूक्ष्मता को जानने के लिए उसके तीन वेद कर दिए गए हैं, अद्यतन भूत यानी आज का, अनद्यतन भूत आज का नहीं, और परोक्ष। इसी तरह अंग्रेजी में प्रत्येक काल के चार वेद किए गए, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी आई गो, प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम गोइंग, प्रेजेंट परफेक्ट जैसे आई हैव गॉन एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे आई हैव बीन गोइंग, या एक ही गु क्रिया गोइंग हैव गॉन हैव बीन गोइंग आदि रूप इसलिए ग्रहण कर लेती है क्योंकि यहाँ वर्तमान काल के सूक्ष्म भेदों को क्रियापदों द्वारा प्रकाशित किया गया है और काल के सूक्ष्म भेदों के कारण क्रियापद नए नए रूप धारण करते चले गए। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि क्रियापदों के निर्माण में काल का अत्यधिक हाथ रहता है। पांचवा, पद और वाच्य। क्रियापद में कारक की प्रधानता को जानने के लिए वाच्य का प्रयोग होता है, अर्थात वाच्य यह बतलाता है कि किस क्रिया में कार्य की प्रधानता है, किस क्रिया में कर्म की प्रधानता है और किस क्रिया में भाव की प्रधानता है। अतः इसी प्रकार आधार पर तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में वाच्यों का प्रयोग आधुनिक है। ये वाच्य संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्रचलित हुए हैं। संस्कृत में यह लगाकर कर्मवाच्य बनता था किंतु हिंदी में मूल क्रिया के भूतकालिक कृदंत के रूप में जाना धातु के आवश्यक रूपों में संयोग से कर्मवाच्य बनाया जाता है। जैसे मोहन रोटी खाता है यानी कर्तृवाच्य है, अब मोहन से रोटी खाई जाती है कर्मवाच्य है। उक्त वाक्यों में खाता है क्रियापद कर्तृवाच्य का द्योतक है क्योंकि खाता है क्रियापद का सीधा संबंध कर्ता मोहन से है किंतु खाई जाती है क्रियापद का संबंध रोटी से हो गया है जिसका निर्माण जाना क्रिया के भूतकालिक कृदंत जाति से हुआ है, अतः खाई जाती है पद कर्मवाच्य है। उक्त उदाहरण से यह सिद्ध है कि कर्मवाच्य से पद सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं किंतु भाववाच्य का निर्माण प्राय अकर्मक क्रियाओं से ही होता है। जैसे राम चलता है कर्तृवाच्य, राम से चला नहीं जाता भाववाच्य। इस प्रकार चला नहीं जाता वाक्य में चलना अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य की क्रिया में कर्म नहीं होता और उसका कर्ता करण कारक में आता है, जैसे उक्त उदाहरणों में राम से करण कारक है। परंतु यह कहना ठीक नहीं है कि केवल अकर्मक क्रिया से भाववाच्य होता है क्योंकि सकर्मक क्रिया से भी भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से रोटी खाई नहीं जाती, उक्त वाक्य में खाना क्रिया सकर्मक है और उक्त वाक्य भाववाच्य का है। इसे सिद्ध है कि अकर्मक के साथ साथ सकर्मक से भी भाववाच्य का निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। जैसे श्याम अमरूद खाता है कर्तृवाच्य है, श्याम से अमरूद खाया जाता है कर्मवाच्य है, श्याम से अमरूद खाया नहीं जाता भाववाच्य। उक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में जब किसी क्रिया का प्रयोग भाववाच्य में होता है तब उसमें नहीं का प्रयोग कर देते, परंतु भाववाच्य की क्रिया सभी कालों एवं सभी कृदंतों में नहीं आती। यह भी कोई नियम नहीं है कि नहीं कि योग द्वारा भाववाच्य बनाया जाता है, अकर्मक क्रिया से तो बिना नहीं के भी भाववाच्य बना दिया जाता है। जैसे हमसे चला जाता है वर्तमान, हमसे चला जाएगा भविष्य, हमसे चला गया भूतकाल। अतः क्रियापद के वाच्यानुसार भी कई रूप हो जाते हैं। यही कारण है कि क्रियापद के निर्माण में वाच्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थ तत्व और संबंध तत्व। प्रतीक वाक्य का निर्माण पदों से होता है। कभी कभी वाक्य में एक ही पद होता है किंतु अधिकांश वाक्यों का निर्माण कई पदों से होता है। वाक्य विधायक उन पदों का विशेषण करने पर ज्ञात होता है कि उनमें से कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो केवल शब्दार्थ का बोध कराती हैं और कुछ ध्वनियाँ उन शब्दार्थों के पारस्परिक संबंध की द्योतक होती हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में चार पद आए हैं, राम ने रावण को बाण से और मारा। इन पदों में से राम, रावण, बाण और मारना ध्वनियाँ तो इस वाक्य के शब्दार्थ का बोध कराने वाली हैं, जबकि ने को से आ ध्वनियाँ किसी विशिष्ट अर्थ की द्योतक नहीं है, अपितु वाक्य में प्रयुक्त राम, रावण, बाण और मारना शब्दों के पारस्परिक संबंध की द्योतक, क्योंकि ये ध्वनियाँ ही बतलाती हैं कि इस वाक्य में राम करता है, रावण कर्म है, बाण करण है और मारा भूतकाल की क्रिया है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि प्रत्येक वाक्य में दो प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग होता है। कुछ ध्वनियाँ वाक्य के विचार या अर्थ का बोध कराती हैं और कुछ ध्वनियाँ उन अर्थों एवं विचारों के वाक्यगत पारस्परिक संबंध का ज्ञान कराती हैं। इनमें से जो ध्वनियाँ केवल अर्थ या विचार का बोध कराती हैं उन्हें अर्थ तत्व या अर्थ मात्र कहते हैं और जो ध्वनियाँ उन अर्थ तत्वों के पारस्परिक संबंध की द्योतक होती हैं उन्हें संबंध तत्व या रूप मात्र कहते हैं। इस दृष्टि से अर्थ तत्व से अभिप्राय किसी वाक्य के उन शब्दों से है जो अर्थ या विचार का बोध कराया करते हैं और संबंध तत्व से अभिप्राय उन शब्दों से है जो अर्थ तत्व द्वारा अभिव्यक्त विचारों एवं अर्थों का पारस्परिक संबंध बताया करते हैं। जैसे उक्त वाक्य में राम, रावण, बाण और मारना शब्द तो अर्थ तत्व हैं और ने, को, से और आ परस्पर संबंध तत्व हैं। संबंध तत्व के भेद। संबंध तत्व को कुछ विद्वान रूप मात्र भी कहते हैं। ये संबंध तत्व या रूप मात्र केवल प्रसंग ही नहीं होते, अपितु कभी किसी वाक्य में ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कभी शब्दांग बनकर आते हैं, कभी आगम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कभी विकरण बनकर आते हैं, कभी वे प्रकृति के साथ ही जुड़े रहते हैं और कभी शून्य प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार संबंध तत्व के अनेक भेद देखे जाते हैं। सुविधा की दृष्टि से उन्हें निम्नलिखित 12 भेदों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, शब्द स्थान। संसार की कुछ भाषाएं ऐसी है जिनके वाक्यों में शब्द का स्थान ही संबंध तत्व का द्योतक होता है। जैसे चीनी भाषा में शब्द स्थान से ही वाक्य में पदों का व्याकरणिक संबंध ज्ञात होता है। जैसे उन तो उनगो तानी, मैं तुझे मारता हूँ, नितानगो, तुम मुझे मारते हो। उक्त वाक्यों में से पहले वाक्य में उनगो करता है और नी कर्म है, जबकि दूसरे वाक्य में नी करता है उनगो कर्म है। यह ज्ञान केवल शब्दों के स्थान से ही हो रहा है, वैसे शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह शब्द स्थान समास वाले पदों में भी संबंध तत्व का बोध कराया करते हैं। जैसे मल्ल ग्राम, पहलवानों का गांव, ग्राम मल्ल, गांव का पहलवान, धनपति, धन का स्वामी, पतिधन, पति की संपत्ति, राजपुत्र, जैसे राजा का पुत्र, पुत्र राज, लड़कों में श्रेष्ठ, लाइट हाउस यानी बिजली घर, हाउस लाइट जैसे घर की बिजली। दूसरा, स्वतंत्र शब्द। संसार की ऐसी कई भाषाएं भी हैं, अनेक हैं, जिनके वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्द ही उस वाक्य पदों को पारस्परिक संबंध का बोध कराया करते हैं। अतः स्वतंत्र शब्द भी एक प्रकार के संबंध तत्व होते हैं, जैसे संस्कृत के इति, इव, अपि, च, पर आदि, हिंदी के ने, को, से के लिए का, की, के, में, पर आदि शब्द, अंग्रेजी में अपान, फ्रॉम, टिल, इन, बाय, टू, इनटू आदि। तीसरा, अविकृत शब्द। वाक्यों में प्रयुक्त कुछ अविकृत शब्द भी संबंध तत्व के द्योतक होते हैं। इन शब्दों में विभक्ति या प्रत्यय नहीं लगती, फिर भी ये शब्द पद के रूप में वाक्य के अंतर्गत कार्य किया करते हैं। कुछ विद्वान ने शून्य प्रत्यय वाले पद भी कहते हैं, जैसे भूभृत, वणिक, सम्राट, रमा, नदी, स्त्री, नारी, लता, आशा, इच्छा, वारि, मधु, अस्थि आदि शब्द संस्कृत की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अविकृत रहकर ही संबंध तत्व का बोध कराते हैं। इस प्रकार हिंदी में अनुज्ञावाचक जा, ला, आ, सो, हो, रो आदि शब्द भी अविकृत ही हैं, क्योंकि इनमें से धात्वंश सूचक ना हटा देने से ही ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तू जा, तू ला, तू आ आदि। ऐसे ही अंग्रेजी में फिश, शिप आदि कुछ ऐसे अविकृत शब्द मिलते हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप से होता है। चौथा, अव्यय शब्द। संसार की ऐसी कितनी भी भाषाएं हैं जिनमें अव्यय शब्द ही संबंध तत्व का कार्य किया करते हैं। जैसे संस्कृत में प्रति, जैसे तुम गृहम प्रति गच्छ, हिंदी में लेकिन, मगर आदि, यद्यपि, तथापि, तो, ज्यों, त्यों आदि। जैसे मोहन तो आया लेकिन सोहन नहीं आया, यद्यपि राम ने धनुष तोड़ा था तथापि लक्ष्मण का परशुराम से झगड़ा हुआ, ज्यों ही बिजली गई त्यों ही सिनेमा घर में शोर होने लगा आदि। अरबी फारसी के ब, की, लाकिन आदि। पांचवा, प्रयत्न। पद निर्माण में जिन प्रयत्नों का प्रयोग होता है वे प्रत्यय भी एक प्रकार के संबंध तत्व ही होते हैं, क्योंकि इनसे भी पदों के व्याकरणिक संबंध का बोध होता है। जैसे संस्कृत के क्षत्रि, अक्त यानी गच्छत, गत आदि प्रत्यय, अंग्रेजी की ईडी यानी डब्लू वाक्ट, आईडी जैसे सैड, टी जैसे वेप्ट, आईएन जैसे सेइंग, ईएस से गोज, एन से ब्रोकन, नेस से रेडनेस, रेड से काइंड रेड, इश आईएस से चाइल्डिश, एल वाई से स्लोली, एफ वाई से क्लेरिफाई, आई जेड ई से मोनोपोलाइज आदि। हिंदी का आ यानी मारा, अंत का रटंत, आई से खुदाई, आउ से उखाड़ू, आका से धड़ाका, आन से उठान, आपा से पुजापा, आशा से रुआसा, आठ से चिकनाहट, इला से रंगीला, आयन से पंडिताइन आदि। प्रत्यय अर्थ तत्व के साथ जुड़कर विभिन्न संबंध तत्वों का बोध कराया करती हैं। छठा, आगम। संसार के कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनके क्रियापदों के पूर्व कुछ शब्द जुड़ते हैं, जिन्हें संस्कृत में आगम कहते हैं। यह आगम भी एक प्रकार का संबंध तत्व ही होता है, क्योंकि इसमें भी क्रियापद के वाक्यगत संबंध का बोध होता है। जैसे संस्कृत के अभवत, अभवताम अभवन अभवत अभवः अभवतम अभवतः अभवम अभवाव अभवाम तथा अपठत अगमत अभविष्यत सीधत अगादित आदि भूतकालिक क्रियाओं में अट का आगम ही संबंध तत्व का द्योतक है। सातवां विकरण। कुछ भाषाओं के क्रिया के मध्य में कुछ ऐसे शब्द जुड़ा करते हैं जो उस क्रिया के गण काल वाच्य आदि का बोध कराया करते हैं, उन्हें विकरण कहते हैं। ये विकरण भी एक प्रकार के संबंध तत्व होते हैं। संस्कृत के शक शपो लुक श्लु शैन श्नु श श्नु उ श्ना यक तास स्य और सिप ऐसे विकरण हैं जो क्रियापदों से जुड़ा करते हैं। जैसे संस्कृत के युद्धते युद्ध धन य धनते और गम्यते गम धन य धनते। ये य विकरण कार्यत क्री धन अय धनती में अय विकरण स्नायपति स्ना धन पय धनती में पय विकरण। हिंदी के लिखवाना पढ़वाना हटवाना आदि क्रियाओं में वा विकरण संबंध तत्व का ही द्योतक है। आठवां अपश्रुति। संसार की कुछ भाषाओं में शब्दों के अंतर्गत कुछ ऐसे आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें अपश्रुति कहते हैं और जो वाक्य में विद्यमान पदों के पारस्परिक संबंध का बोध कराया करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें अंतर विभक्ति भी कहते हैं। जैसे संस्कृत के वृत्र भरत और बभार पद एक भू धातु से अपश्रुति द्वारा बनाए गए। अंग्रेजी में सिंग सैंग संग पद, लैटिन में ईडू फ्यूडस फिडेस पद, अरबी में कतल कुतिल युक्तुलु कातिल कितल कितल आदि पद, हिंदी में मेल मेला मिलाप मिलन मिलना मिलाना आदि पद अपश्रुति के कारण है विविध रूपों में परिवर्तित होकर प्रयुक्त होते हैं। अतएव अपश्रुति भी एक प्रकार का संबंध तत्व है। नवा आवृत्ति। कुछ भाषाएं ऐसे भी मिलती हैं जिनमें कुछ ध्वनियों के एक ही शब्द के अंतर्गत आवृत्ति होती है और यह आवृत्ति भी संबंध तत्व को प्रकट करती है। संस्कृत और फारसी में ऐसी कई भाषाएं मिलती हैं जिनमें ध्वनियों की आवृत्ति होती है। जैसे संस्कृत में परस्मय पद लिट लकार में पट धातु से पपाठ रूप बनता है और पच धातु से पपाच रूप बनता है। इनमें प ध्वनि की आवृत्ति हुई है। विध धातु के विविध रूप में व की आवृत्ति तथा शक्ली धातु के शशक में श ध्वनि की आवृत्ति भी संबंध तत्व की द्योतक है। ऐसे ही फारसी में आमदन से बने रूपों आमदंद आमदेद आदि रूपों में द ध्वनि की आवृत्ति संबंध तत्व की द्योतक है। अतएव आवृत्ति भी एक प्रकार का संबंध तत्व कहलाती है। दसवां दिरुक्ति। कुछ भाषाओं में केवल एक ध्वनि ही आवृत्ति नहीं होती अपितु कोई पूरा शब्द ही दो बार प्रयुक्त होता है। शब्द की दिरुक्ति भी पदों के संबंध तत्व को प्रकट करती है। जैसे संस्कृत में देवी देवी उक्थे उक्थे, हिंदी में घर घर दिन दिन बात बात गांव गांव नगर नगर आदि में दिरुक्ति के द्वारा प्रति का भाव प्रकट हुआ है। ऐसे दिरुक्ति वाले शब्द मलय वर्ग की भाषाओं में बहुत पाए जाते हैं और वे वचन प्रेरणा तारतम्य आदि का बोध कराते हैं। अफ्रीका की कुछ भाषाओं में भी यह दिरुक्ति की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे इरिक यानी चलना, इरिक रिक यानी बहुत चलना आदि। इस प्रकार दिरुक्ति भी एक प्रकार का संबंध तत्व होती है। ग्यारहवां बलाघात। कुछ भाषाओं में एक ही पद के पहले अव्यय पर याद बल पड़ता है तो यह पद संज्ञा बन जाता है और यदि अंतिम अवयव पर बल पड़ता है तो वह पद क्रिया बन जाता है। इस प्रकार बलाघात भी विविध संबंध तत्वों को प्रकट किया करते हैं। जैसे अंग्रेजी में कन्फ्लिक्ट यानी संज्ञा, कन्फ्लिक्ट यानी क्रिया, कॉन्टैक्ट यानी संज्ञा, कॉन्टैक्ट यानी क्रिया, कन्वर्ट संज्ञा है, कन्वर्ट यानी क्रिया है, इम्पोर्ट यानी संज्ञा है, इम्पोर्ट यानी क्रिया है, प्रोटेस्ट यानी संज्ञा है, प्रोटेस्ट यानी क्रिया है, प्रोजेक्ट यानी संज्ञा है, प्रोजेक्ट क्रिया है, ट्रांसफर यानी संज्ञा है, ट्रांसफर क्रिया है आदि। इस तरह संस्कृत में यदि इंद्र शत्रु पद के पहले शब्द का बलाघात रहे तो यह बहुव्रीहि समास हो जाता है और दूसरे पद इंद्र शत्रु पर बलाघात रहे तो वह तत्पुरुष समात्र हो जाता है। ऐसे ग्रीक भाषा में भी बलाघात संबंध तत्व को प्रकट किया करते हैं। जैसे पेट्रोक्टोनॉस में टो पर बलाघात होने के कारण यह संज्ञापद बन जाता है, उसका अर्थ पिता को मारने वाला होता है। यदि पेट्रोटोनोस में रो पर बलाघात होता और वह क्रियापद बन जाता है, इसका अर्थ होता है पिता द्वारा मारा गया। अतः बलाघात भी एक प्रकार का संबंध तत्व होता है। बारहवां ध्वनि निष्कास। कुछ भाषाएं ऐसी मिलती हैं जिनके पदों में से यदि अंतिम ध्वनि निकाल दी जाती है तो उसका निकल जाना भी संबंध तत्व का बोध कराया जाता है। जैसे संस्कृत की दा धातु का अर्थ देना होता है, किंतु जब इसको जल धन वार काम सुख आदि शब्दों के साथ जोड़ते हैं तब दा में से आ ध्वनि निकल जाती है और क्रमशः जल दह जन धन दह वार दह काम दह सुख दह आदि पद बन जाते हैं। इसी प्रकार फ्रांसीसी भाषा में पिया क्रिया का स्त्रीलिंग रूप सोल बनता है, किंतु इसमें से ई का निष्कासन करके इसका पुल्लिंग सोल बना दिया जाता है। इस प्रकार ध्वनि निष्कासन भी एक प्रकार का संबंध तत्व होता है। रूप विकार का स्वरूप। प्रायः यह देखा जाता है कि संसार की सभी भाषाओं में शब्दों एवं पदों में परिवर्तन होते रहते हैं। वैसे जिस गति से ध्वनि परिवर्तन होता है उस गति से शब्दों एवं पदों में परिवर्तन नहीं होता। फिर भी प्रत्येक भाषा के अंतर्गत ध्वनि के साथ साथ पद शब्दों एवं पदों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे संस्कृत भाषा के अकारांत इकारांत और उकारांत शब्दों के चतुर्थी एक वचन और षष्ठी एक वचन के रूप में पर्याप्त अंतर था। जैसे अकारांत बुद्ध का चतुर्थी एक वचन में बुद्धाय और षष्ठी एक वचन में बुद्धस्थ रूप बनता था, ऐसे ही इकारांत अग्नि का चतुर्थी एक वचन में अग्नि और षष्ठी एक वचन में अग्नि रूप बनता था। इसी तरह संस्कृत के उकारांत वायु शब्द का चतुर्थी एक वचन में वायवे और षष्ठी एक वचन में वायो रूप बनता था, परंतु प्राकृतों का विकास होते ही चतुर्थी और षष्ठी एक वचन के रूपों की पृथक्कता नष्ट हो गई और दोनों के रूप एक से बनने लगे। इतना ही नहीं, पहले अकारांत इकारांत और उकारांत शब्दों में चतुर्थी एक वचन और षष्ठी एक वचन के रूप में भी भिन्न भिन्न हुआ करते थे, किंतु प्राकृतों में आकर उनकी यह भिन्नता भी दूर हो गई और अकारांत इकारांत और उकारांत के चतुर्थी षष्ठी एक वचन के रूप एक से हो गए। जैसे अकारांत संस्कृत शब्द बुद्ध के चतुर्थी और षष्ठी एक वचन क्रमशः रूपों बुद्धाय और बुद्धस के स्थान पर पारि प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक वचन में केवल बुद्धस्थ रूप चलने लगा। ऐसे ही इकारांत संस्कृत शब्द अग्नि के चतुर्थी षष्ठी एक वचन के रूप आग्नि और अग्नि के स्थान पर पाली में चतुर्थी षष्ठी एक वचन का एक ही रूप अग्निस हो गया है और अकारांत संस्कृत शब्द वायु के चतुर्थी षष्ठी एक वचन के रूपों में वायवे और वायु के स्थान पर भी पाली में चतुर्थी षष्ठी एक वचन का एक ही रूप वाउस प्रचलित हो गया है। इस प्रकार शब्दों और पदों में जो परिवर्तन प्रायः होते हैं रहते हैं उसी को रूप विकार कहते हैं। रूप विकार और ध्वनि विकार का अंतर। रूप विकार का संबंध शब्दों एवं पदों के परिवर्तन से होता है, जबकि ध्वनि विकार का संबंध किसी शब्द की ध्वनियों से होता है। रूप विकार प्रायः संपूर्ण शब्द एवं पद को प्रभावित करता है और उसके फलस्वरूप या तो प्राचीन शब्द लुप्त हो जाता है या किसी नए रूप का विकास हो जाता है, जबकि ध्वनि विकार के परिणाम स्वरूप न तो कोई शब्द लुप्त होता है और न किसी नए पद का विकास होता है, अपितु प्राचीन शब्द का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे अग्नि का आग बन जाता है ध्वनि विकार है, क्योंकि यहाँ पर अ के दीर्घ होने से ई और न ध्वनियों के लुप्त जाने से आग बन जाता है और इसे अग्नि शब्द की ध्वनि भी किसी मात्रा में विद्यमान है। परंतु रूप विकार में एक रूप में एक स्थान पर एक नया रूप ही प्रचलित हो जाता है। जैसे संस्कृत के अग्नि और अग्नेय इन दोनों रूपों में स्थान पर पाली में एक आगिस रूप का प्रचार होना अथवा संस्कृत में वायवे और वायो रूपों के स्थान पर पाली में एक वाउस रूप का प्रयोग होना, इन रूपों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पाली में आकर संस्कृत में चतुर्थी एक वचन के रूपों का तो पूर्णतया विनाश हो गया है और संस्कृत के षष्ठी एक वचन के रूपों में एक रूप तलाकर उन सब को अकारांत रूपों की तरह कर दिया गया है। इस प्रकार ध्वनि विकार के कारण कभी पूरा शब्द पूर्णतया परिवर्तित नहीं होता, उसका कोई एकाध अंग ही परिवर्तित होता रहता है, जबकि रूप विकार के फलस्वरूप पूरा का पूरा शब्द परिवर्तित ही नहीं होता अपितु लुप्त भी हो जाता है।